Shanti. हम सभी बाबा के आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले विशेष बच्चे हैं। हम आप सब आत्माओं का यही लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप समान प्रैक्टिकल में कर्म करना पड़ेगा। जो ब्रह्मा ने संकल्प बोल कर्म किया वो करना पड़ेगा। तो उस संकल्प बोल कर्म में सबसे पहला है अमृत वेले बाबा का उठना। जब नियम नहीं था 4 बजे उठने का तब भी बाबा 2 बजे उठ करके योग करता था। अमृत बेला सारे दिन के शुरुआत की बेला है। जिस आत्मा ने अमृत बेले बाप को फॉलो कर लिया वो सारा दिन फॉलो कर सकती है। अगर पहला कदम ही नहीं फॉलो किया तो सारा दिन फॉलो फादर नहीं कर सकती। फिर वो आत्मा कुछ भी अपने को समझे लेकिन बाप समान बन नहीं सकती। समान बनने में अगर आपने पहला कदम फॉलो कर लिया तो सारा कदम फॉलो हो जाएगा। क्योंकि पहला अर्थात अमृत बेले का प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर अवश्य पड़ता है। साइंस ऐसा कहती है कि सुबह का 4 घंटा ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो जो अपना सबका अमृत बेला है अगर उस समय आप योग की गहराई में अपने स्वरूप के चिंतन में या अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति में अगर गहराई से आप चिंतन कर लें तो वो चिंतन स्वरूप सहज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अमृत बेला ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है। उस समय आप जो अपना स्वरूप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो पहला पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाप ने किया कि अमृत बेले उठकर बाप को याद करना। अमृत बेले का महत्व बहुत ज्यादा है। आप देखो इस स्थूल दुनिया में कि अमृत बेले का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर कैसे पड़ता है, इसका एक सुंदर उदाहरण बाबा ने इस साकार दुनिया का देकर समझाया था। जैसे आप लोग आए हैं, ट्रेन से आए होंगे, आपने ट्रेन में बैठा देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो जिस समय चलती है उस समय इंजन को थोड़ा जोर लगता है खींचने के लिए, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। सार, अगर आप अमृत बेले अपने श्रेष्ठ स्थिति को बना लो, अटेंशन देकर अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाओ, योग की ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप के साथ कंबाइंड हो जाओ, तो वह स्थिति सुबह का थोड़ा अटेंशन दिन में सहज हो जाएगा। आपको पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक नेचुरल रूप से चलता रहेगा तो अमृत बेले विशेष अटेंशन दे दो। विशेष अटेंशन में क्या विशेष अटेंशन? आपके पहले समय अमृत बेले में जो आपकी योग की स्थिति पावरफुल बन जाए, उसका सारा आधार है, आप कल करके देखना, उसका सारा आधार है आपके आंख खुलते ही पहले संकल्प पर। आज प्रयोग करके देखना, आंख खुलते ही जो आपका पहला संकल्प आता है वही संकल्प आपको पूरा योग में आता रहेगा। मेजॉरिटी तीन प्रकार के संकल्प आते होंगे। पहला, कोई सोकर उठते ही घड़ी देखता है, कोई सोकर उठते ही पिछले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन पर रह गया है वो उठते ही याद आता है, अर्थात उसका संकल्प आता है। कोई उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। तीनों संकल्प का रिजल्ट क्या होता है आप कल करके देखना। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, मेजॉरिटी लोग घड़ी देखते कितना टाइम हुआ है, तो जो सोकर उठते घड़ी देखते हैं जब वह योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट में संकल्प आएगा कितना समय बीता है, कितना देर हुआ है, वो घड़ी कॉन्शियस ही रह जाएंगे, उपराम नहीं हो पाएंगे। अनुभव होगा और नहीं होगा तो कल करके देख लो। جو سو کر کے اٹھتے ہی اگلے دن کی دنچریا، مان لو ٹی وی دیکھتے دیکھتے، نیوز سنتے سنتے، یا کوئی بات ہو گئی تھی، وہ اسمرتی میں آتے آتے سو گئے، بابا کو چارٹ نہیں دیا، سو گئے، تو وہی بات سوپن میں بھی آئے گی اور وہی بات اٹھتے ہی یاد آئے گی۔ پھر یوگ میں کتنا بھی اپنے من کو بابا میں لگانا چاہو، بابا کی باتیں یاد کرنا چاہو، ایک سیکنڈ وہ یاد آئے گا، دوسرے سیکنڈ یہ بات یاد آ جائے گی، بھول نہیں پائیں گے۔ اور تیسرا، کئی سو کر اٹھتے ہی بابا گڈ مارننگ کرتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سو کر اٹھتے ہی باپ دادا گڈ مارننگ، اونلی بابا نہیں، باپ دادا دونوں سے گڈ مارننگ کرنا ہے، باپ دادا کہو یا ماں پتا کہو، بڑی گوہ پہیلی ہے، گڈ مارننگ دونوں سے کرنا ہے، یاد شیو بابا کو کرنا ہے، پھالو برہما کو کرنا ہے، گڈ مارننگ دونوں سے کرنا ہے، یاد شیو بابا کو کرنا ہے، کرم میں پھالو برہما کو کرنا ہے۔ تو دونوں سے گڈ مارننگ کرو، ایک سے نہیں۔ دونوں سے گڈ مارننگ کرنے کی بدھی کیا ہے؟ پہلے ہی سنکلپ میں دونوں سے گڈ مارننگ ہو جائے، اس کی بدھی ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی آپ کا پہلا سنکلپ آئے کہ میں آتما پرم دھام سے اوترت ہو، برہمن آتما بن، باپ دادا سے ملن منانے جا رہی ہوں۔ اچھا، میٹھے باپ دادا گڈ مارننگ، میں آتما پرم دھام سے اوترت ہو کر برہمن آتما بن، باپ دادا سے ملن منانے جا رہی ہوں۔ اچھا، میٹھے باپ دادا گڈ مارننگ۔ تو اس میں دونوں کی گڈ مارننگ ایک ساتھ ہے، برہمن کے ناتے برہما باپ سے گڈ مارننگ، آتما کے ناتے شیو باپ سے گڈ مارننگ۔ آنکھ کھلتے ہی ماں پتا یا باپ دادا دونوں سے آشیرواد لے لو، لے لو لے لو دعائیں ماں باپ کی، صرف باپ کی نہیں، ماں باپ کی، سر سے اترے گی گٹھری پاپ کی۔ دعا دونوں کی لو، یاد ایک کو کرو، شیو بابا کو یاد کرو، پھالو برہما کو کرو۔ جس نے امرت بیلے یہ پکا کر لیا، وہ آتما کو باپ سمان بننے میں دیری نہیں ہے، क्योंकि अमृत वेले योग जो रोज 4 से 5 करते हैं वो 7 प्रकार की प्राप्ति ऐसी है जो और किसी समय योग में नहीं हो सकती। ऐसे तो बाबा को कब भी याद करो फायदा है, लेकिन अमृत वेले योग में 7 प्रकार की प्राप्ति ऐसी है जो और किसी समय योग में वो प्राप्ति नहीं है, जो अमृत वेले प्राप्ति। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने अमृत वेले अर्थात वो 7 प्रकार की प्राप्तियां जिस आत्मा ने कर ली, वो आत्मा निरंतर योगी या बाप समान सहज स्थिति को प्राप्त कर लेगी। सुबह मेहनत कर लिया थोड़ा तो आगे सब सहज हो जाएगा, लेकिन सुबह फुल अटेंशन दे करके चलो बाबा के पास।
प्रभु का
ओम शांति। तो बता रहे थे कि अमृत बेला पावरफुल तो सारा दिन पावरफुल, क्योंकि सात प्रकार की प्राप्तियां हैं। पहला है कि अमृत बेले वायुमंडल बड़ा सतो प्रधान होता है, उसका सहयोग मिलता है। दूसरा, अमृत बेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है, थकावट नहीं है, तो फ्रेश माइंड से याद करना सहज। तीसरी बात, अमृत बेले कोई कर्म का संकल्प नहीं है, निसंकल्प होकर बाप के पास बैठ सकती है। चौथी बात, अमृत बेले उठकर याद करना अर्थात बाप का आज्ञाकारी बनना, आज्ञाकारी बनने से बाप की आशीर्वाद प्राप्त होती है। और पांचवा है 111, अर्थात सृष्टि के आदि में 111 में अवश्य आ जाएंगे। छठी बात, अमृत बेले ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में होता है, जितना लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। शिव बाप अमृत बेले आपके पापों को क्षमा कर सकता है। सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा माँ के रूप से बच्चों को इष्टा सकाश देती है, बल भरती है। और शिव बाप अमृत बेले सर्व बच्चों की सर्व शक्तियों रूपी किरणों से पालना करते। ये सात प्राप्तियां विशेष है। पहली बात, अमृत बेले वायुमंडल का सहयोग है, वायुमंडल का प्रभाव आपके मन अर्थात संकल्प शक्ति पर अवश्य पड़ता है। जैसा वायुमंडल वैसा संकल्प स्वतः उठता है। उदाहरण के रूप में, आप बाबा के घर में आए हैं, यहाँ आप देखो चाहे घर पर थे चाहे सेंटर पर थे, लेकिन जब बाबा के घर में पहुंचे हो यहाँ, तो आपका योग स्वतः लगा ही हुआ है। दूसरे संकल्प बहुत शांत हो गए, थोड़े बहुत आते होंगे, नहीं तो शांत हो गए। कारण वायुमंडल है। आप यहाँ देखो 24 घंटा दस बीस पचास योग में बैठे ही रहते हैं, कहीं न कहीं वो वायुमंडल बना हुआ है। स्वयं भगवान आकर इस धरणी पर बैठता है। सोचो, आप थोड़ी देर आपका योग लग जाए पावरफुल, तो उस स्थान पर सन्नाटा छा जाता है। और जहां स्वयं भगवान ढाई तीन घंटा बैठा रहे, वो धरणी क्या हो जाएगी, समझ सकते हैं। तो यह वायुमंडल का सहयोग मिलता है। आप देखो, लौकिक दुनिया में सुबह के समय या तो लोग सोए रहते हैं, या जो उठते हैं पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं। दुनिया का शोर गुल सब खत्म रहता है, बड़ा साइलेंस रहता है, सतो प्रधान रहता है। उस समय अगर आप थोड़ा अटेंशन दे दो तो सतो प्रधान वायुमंडल आपके मन बुद्धि की स्थिति को सतो प्रधान बना देगा। सतो प्रधान श्रेष्ठ संकल्प लाएगा, थोड़ा अटेंशन दे दो तो, क्योंकि वायुमंडल का बहुत सहयोग है। उदाहरण के रूप से वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर कितना गहरा पड़ता है, तन मन दोनों आप सबको अनुभव होगा या देखा होगा कि कोई बीमार पड़ता है, सारी रात तड़फ रहा हो, उसे नींद नहीं आती हो, कोई दवा नहीं काम कर रही है, लेकिन उस पेशेंट को आप देखेंगे चार बजे जरूर सो जाएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए सोए, है या नहीं है। सोचो, जो दवाई नहीं काम कर पाती है, कोई चीज नहीं काम कर पाता है, वायुमंडल सुला देती। इतना वायुमंडल का प्रभाव तन और मन पर पड़ता है। इसके बाद देखो, वायुमंडल का प्रभाव चोर दिन में चोरी करेगा, रात को करेगा, लेकिन सुबह चार बजे चोरी नहीं करता है। बहुत बड़ी बात है ये कि चोर के मन को भी वायुमंडल बदल देता है, उस समय चोरी नहीं करता है। तो जब उनके मन पर प्रभाव पड़ सकता है, चोर चोरी करना छोड़ सकता है, तो क्या हम ब्राह्मण आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, भगवान के बच्चे, हम निगेटिव संकल्प को छोड़ नहीं सकते? नहीं छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ी अटेंशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस समय दो प्रकार का विघ्न आता है सुबह। एक, हमारे अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव, वो वहां विघ्न डालता है। अगर सारा दिन अगले दिन श्रीमद की अवज्ञा की है तो उसका इतना बोझ चढ़ जाता है कि वो हल्की नहीं हो पाती। रिजल्ट, नींद आती, माथा भारी रहता है, वो ऊपर नहीं जा पाती, थोड़ी देर पुरुषार्थ करती है बस फिर लटक जाती। ये अगले दिन के पास्ट कर्म का बोझ है। अवज्ञा का बोझ है, अवज्ञा का दंड है। और शाम को बाबा को चार्ट दे करके, बाबा से माफी ले करके सोई नहीं है, इसलिए अगले दिन का खाता उस आत्मा के ऊपर रह गया है। बाबा ने तो यहां तक कहा था, अगले दिन का चार्ट शाम को रोज देना, अर्थात धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाना। क्यों? अगर चार्ट दिया आपने, माना बाबा को अपनी सारी बात बताई और बाबा से माफी लिया, खत्म हो गया ना। अगर चार्ट ही नहीं देते, माफी ही नहीं लेते, तो फिर क्या होगा? तो पहली बात है कि वायुमंडल का सहयोग मिलता है। दूसरी बात है कि आत्मा सारी रात रेस्ट करके उठी है, फ्रेश माइंड है, लेकिन सो करके उठते ही फ्रेश माइंड उनका होगा जिसको रात को गहरी नींद आई होगी। गहरी नींद आई होगी और उल्टा पुल्टा स्वप्न नहीं आया होगा, तो सो करके उठते ही उसका मन फ्रेश होगा। अब इन दोनों बातों का आधार क्या है? जो आपको गहरी नींद भी आ जाए और उल्टे पुल्टे स्वप्न ना आए, उनका आधार है, एक तो रात को बाबा को चार्ट देकर सोना। चार्ट देना माना कीचड़ा जला देना, अगले दिन के जो भी कर्म का था कीचड़ा सब जला देना। बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया था, आपने मान लो घर की सफाई किया, पूरा घर साफ किया और कीचड़े को घर के किसी कोने में रख दिया, जलाया नहीं या बाहर कहीं फेंका नहीं, तो उस कीचड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर किसको काटेगा? पूरे घर की सफाई किया, सिर्फ कीचड़े को जलाया नहीं या फेंका नहीं। ऐसे आप सारा दिन भल अटेंशन दो, अगर शाम को चार्ट नहीं दिया तो 100% कोई भी अभी श्रीमत की पालना नहीं कर सकता, वो कीचड़ा रह जाएगा। और रात को स्वप्न के रूप में आएगा और सोकर उठते ही वही याद आएगा, इसलिए आपका योग नहीं लगेगा, माथा भारी रह जाएगा। तो चार्ट दे करके बाबा की याद में सो जाओ तो गहरी नींद होगी, और गहरी नींद होते हुए भी एकदम हल्की होगी। गहरी नींद का मतलब ये नहीं कि कोई चिल्लाता रहे आपकी आंख ही न खुले, उसको गहरी नींद नहीं कहा जाता है। गहरी नींद अर्थात योगी के लिए कहा गया है श्वान निद्रा। श्वान मतलब कुत्ता, देखो सोता भी है और जरा सा भी आहट हो तुरंत उठ जाता है। और यह प्रैक्टिकल अपने बाबा का था, ब्रह्मा बाबा का। कमरे में रेस्ट करता था, कोई बच्चा 2 बजे 2:30 बजे कभी किसी समय जैसे दरवाजे के पास पहुंचता था, आओ बच्चे जैसे बैठा ही हुआ है। इतनी हल्की नींद थी और इतनी डीप नींद थी। डीप का अर्थ ही है और कोई संकल्प नहीं, बस बाबा की याद या और सभी संकल्पों से निसंकल्प। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी अंत में ऐसा समय आएगा जब आप लोगों को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके आगे लाइन लगी रहेगी लोगों को लेने वाले, कोई शांति की, कोई शक्ति की, कोई कुछ की, तब आप लोगों को सोने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय अगर आप 5 मिनट भी अशरीरी हो गए, एकदम बाप के पास बाप की गोद में बैठ गए, तो 5 मिनट अशरीरी होना 5 घंटा आराम के बराबर शक्ति दे जाएगा। अव्यक्त बाबा के महावाक्य। लेकिन ये स्थिति आपको बनानी पड़ेगी। तो अमृत वेले दूसरा फायदा, फ्रेश माइंड होने से, फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। सारा दिन दिमाग थक जाता है। अभी देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा कारोबार नहीं है, क्लास चल रहा है, इतनी आवाज हो रही है, फिर भी कोई कोई बिचारे बिचारा ही कहा जाएगा। अच्छा, तीसरा फायदा है कि अमृत वेले कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं है। सारे दिन तो कार्य का संकल्प रहता ही रहता है, कितना भी कुछ करो मन को मोड़ने के लिए, लेकिन याद आ ही जाता है जिम्मेदारी। अमृत वेले कोई कार्य व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं, वो संकल्प क्रिएट कर लो वो आपकी गलती है। 4 से 5 योग का टाइम है, 4:45, उस समय अगर कोई विशेष जिम्मेदारी की ड्यूटी नहीं है तो सेवा का संकल्प लाने नहीं देना चाहिए। उस समय बिल्कुल और संकल्प नहीं लाने देना चाहिए, क्योंकि उस समय निसंकल्प हो करके हमें बाप को याद करना। अंत में शरीर छोड़ते समय अगर सेवा भी याद आई तो फेल हो जाओगे, सेवा भी व्यक्त है वो भी ना याद आए। इतना सुबह अशरीरी होना है और इसका चांस सुबह को होता है, सिर्फ अटेंशन की जरूरत। हाँ, किसी की सेवा ऐसी है वो तो सेवा उसे करनी है। सेवा का महत्व अपना है, योग का महत्व अपना है। सेवा के समय सेवा करना जिसकी जिम्मेदारी है वो योग में उसका एड है। जैसे 84 में शायद तपस्या बरस मनाया गया था, हमारी सेवा किचन में थी तो सुबह योग के समय चाय बनाते थे और क्लास के समय नाश्ता बनाते थे, दिन में भट्टी के समय खाना बनाते थे। तो ना योग मिलता था, ना क्लास मिलता था, ना कुछ नहीं, मुरली भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे तपस्या बरस बीतने को आया, तो मुझे संकल्प चला कि तपस्या बरस बीत जाएगा, हम कब तपस्या करेंगे, हमारा तो सेवा बरस ही जा रहा है। तो फिर बाबा को इस संदेश में कहा था, गुलजार दादी को कहा, तो दादी ने बाबा से कहा, बाबा बच्चा ऐसा कहता है। तो बाबा ने कहा था संदेश में कि बच्चे को कहना कि बच्चा दुआओं से ही पार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब नहीं कि योग छोड़कर सेवा करनी है, नहीं, जिसकी ड्यूटी ऐसी है उसकी बात। जैसे देखो आप योग करके जाते हो, जो चाय बनाने वाला है वो भी आ जाए योग करने, और आप जाओ चाय ना मिले तो क्या हालत होगी, कितने का संकल्प चलेगा। अगर वो त्याग करके वहां बनाया तो आपने जो योग किया उसका शेयर उसको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, इतने का शेयर मिलता ही मिलता है। इसलिए दुआओं से पार हो जाएंगे, वो रहा जैसा चांस है। चौथी बात है कि बाप का आशीर्वाद मिलता है, बाप का आशीर्वाद साधारण बात नहीं है। जैसे देखो अपना ब्रह्मा बाबा, मम्मा या दादियां, ये सब इतना आगे क्यों चले गए, वही ज्ञान हमको मिल रहा है, वही स्थान पर हम बैठे हैं, उसी स्थान पर वो हैं, लेकिन वो इतना आगे क्यों चले गए। क्या बाबा को संस्कार नहीं था क्या, क्या बाबा के सामने परीक्षा नहीं थी क्या, क्या बाबा के सामने शरीर का हिसाब किताब नहीं था क्या। हम सबसे हजारों गुना ज्यादा था सब बातें, फिर भी वो आगे क्यों चला गया। एक ही कारण, वो कारण था आज्ञाकारी बनने से बाप का आशीर्वाद। हम सब आज्ञाकारी बनते हैं लेकिन पूरा नहीं। जैसे मुरली सुनेंगे आज और उस पॉइंट को अमल में लाएंगे एक हफ्ते के बाद, मम्मा बाबा दादियों का क्या था कि बाबा ने कहा और उसी समय करने लग जाना, उसी समय करने लग जाना, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी बनना। जैसे मान लो आप बीमार हैं अभी और किसी को कहते हैं बच्चे थोड़ी दवा ला करके दे दो, बीमार है, और उस समय वो दवा ला करके ना दे, दो दिन के बाद आपको एक के बाद चार पांच गोली लाकर दे दे, आप आशीर्वाद देंगे उसे। और हम सब क्या करते हैं, आज मुरली सुनते हैं, करेंगे कुछ दिन के बाद, तो बाप से आशीर्वाद मिलेगा नहीं ना। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में बहुत मेहनत पड़ रही, हिसाब किताब बाबा के सामने भी थे लेकिन बाप का आशीर्वाद हिसाब किताब को दबा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो हिसाब किताब पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बन पाया। हम सब जैसे पुरुषार्थ करते हैं हमारा हिसाब किताब विघ्न बन जाता है, चाहे शारीरिक बीमारी, चाहे मानसिक बीमारी, चाहे किसी प्रकार का हिसाब किताब, हमारे पुरुषार्थ को रोकने लगता है और हम रुक जाते हैं। लेकिन बाप का आशीर्वाद हिसाब किताब को ऊपर नहीं उठने दिया, दबा दिया। इसलिए जो पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने किया, पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आई, वो निरंतर आगे बढ़ते गए, हिसाब किताब दबा रह गया। उसका कारण बाप का आशीर्वाद। और पांचवी बात है, वन 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 में आ जाएंगे। 72 की मुरली है, पढ़ लेना आप लोग। मुरली की हेडिंग है समय की पुकार। उसमें बाबा ने कहा था कि जो बच्चा यहां जितनी देर से उठता है, मी 4:05, 10 मिनट जो भी, जो बच्चा जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहां जितना घंटा लेट उठता है उसका सतयुग में उतना जन्म कम होगा, और जो यहां 4:45 योग करता ही नहीं, वो स्वप्न न देखे कि हम स्वर्ग में आएंगे भी। इतना अमृत बेले का महत्व है, साधारण बात नहीं है। है इसमें कई ऐसे बाबा के विशेष लाल कि जब से ब्राह्मण जन्म लिया है आज तक किसी भी हालत में अमृत बेले का योग मिस नहीं हुआ है, 4:45 किसी भी हालत में हैं। तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हाथ उठाया भी है, हैं उधर हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। भी हमारा भी अपना निजी है, अभी करीब 40-42 साल हो रहा है, आज तक तो योग मिस नहीं हुआ है, ये हमारा अपना भी है। हाँ, बाई चांस कहीं सेवा में लग गए जो सुनाया वो बात अलग है, बाकी बिस्तर पर नहीं रहे। अच्छा, जिनका योग कारणे अकारणे अभी तक मिस हुआ, लेकिन आप लक्ष्य रखते हो हमें 111 में आना है, तो आज से एक काम करो, बताएं मंजूर है? वो काम ये करो, अभी जब आप क्लास से उठो, बाबा के कमरे में जाकर बैठो और बाबा के आगे बैठकर सच्चे दिल से बाबा को ये बातें अपनी बताओ और प्रतिज्ञा लो कि बाबा, जाने अनजाने अलबेलेपन किसी भी कारण से, बाबा आज तक हमारा अमृत बेले का योग मिस हुआ, बाबा क्षमा करना। अब हम सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा अब हमारा योग कभी मिस नहीं होगा। ऐसे पहले आप बाबा से रू रिहान करो, फिर चिटकी लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो, और अब से अगर मिस ना होने दो तो 111 में अवश्य आ जाएंगे। ठीक है कि मंजूर है ना? मंजूर है ना ये बात? ठीक है, मुबारक हो। और दो बातें हैं बता दें भाई, 5 मिनट लगेगा। अच्छा, वो दो बातें हैं, एक कि अमृत बेले जिन बच्चों बच्चों का ब्रह्मा माँ से स्नेह है, ऐसे स्नेही बच्चे को ब्रह्मा माँ वतन में इमर्ज करती। जैसे लौकिक में आपने देखा होगा कि अमृत बेले माँ, अमृत मतलब सुबह, बच्चों को नहला धुला खिला पिला करके और थोड़ा टिफिन में दे भी देती है, जब तक स्कूल से बच्चा वापस आए तब तक के लिए मजबूत कर देती। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा माँ वतन में जिन बच्चों का ब्रह्मा माँ से स्नेह है, ऐसे बच्चे को वतन में इमर्ज करके इष्ट्रा सकाश देती है, इष्ट्रा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। ये विशेष सेवा ब्रह्मा माँ अमृत बेले करती, और शिव बाप अमृत बेले ज्ञान सूर्य बन करके सभी बच्चों पर प्रकाश की किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें बच्चों पर डालता है, जिससे आत्मा के सभी बीमारी अर्थात जो बुरे संकल्प आदि हैं सभी जर्म्स भस्म हो जाते, आत्मा निरोगी बन जाती, शक्तिशाली बन जाती। सातवीं बात, अमृत बेले ब्रह्मा माँ भाग्य विधाता के रूप में है। उस समय स्नेह के आधार से ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो, स्नेह के आधार से आप जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है, इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए यह भाग्य नहीं, स्नेह के आधार से भाग्य की लंबी रेखा खिंचवा सकते। और अमृत बेले शिव बाप से आप अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को शिव बाप से बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में है, लाभ फूल नहीं है, लव फूल है। उस समय आप अपने पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोलेनाथ के रूप में है, बाप के रूप में है। तो यह सात प्राप्तियां अमृत बेले विशेष होती है। अब इन पर हम सब अटेंशन दे दें तो बाप समान बनने में देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति।